पिछले अध्याय में आपने देखा कि मानवी और वेद रात में एक साथ थे और मानवी को शक था कि कोई उन्हें फंसाना चाहता था। इस अध्याय में वेद फुटेज की जांच के लिए गौतम के पास जाता है। गौतम को शक शेखर और मानवी पर गया, लेकिन बाद में साफ हो गया कि मानवी इसमें शामिल नहीं थी। गौतम ने शेखर और मानवी को शक की लिस्ट से बाहर कर दिया। गौतम प्रियंका को एक होटल में देखता है और फिर रमेश मेहरा को प्रियंका के कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। गौतम प्रियंका पर नज़र रखने का फैसला करता है। मानवी तैयार होने के लिए संघर्ष करती है और वेद उसे दिलासा देता है। अब नेक्स्ट। वेद तैयार होकर बाहर कॉरिडोर में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ हल्की सी गहरी थी, लेकिन उसमें मुस्कान झलक रही थी। बात खत्म कर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। मानवी अभी भी आईने के सामने खड़ी थी, अपने दुपट्टे को एक बार फिर ठीक कर रही थी। मानवी के लिए अपने निशान छुपाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था। दवाई खाने के बाद वो अपने आप को ठीक फील कर रही थी। जैसे ही वेद की नज़र मानवी पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में शरारत तैर गई और होठों पर मुस्कान आ गई। जो रात को उसके और मानवी के बीच हुआ था, उस एक रात ने उन दोनों के बीच की नज़दीकी बढ़ा दी थी। दोनों ही अभी बोल नहीं रहे थे, पर उन दोनों के मन पर कोई बोझ नहीं था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मानवी ने एक झटके से उसकी तरफ देखा, मगर तुरंत मुंह फेर लिया। प्लीज़ वेद, मेरा मूड बहुत ख़राब है। ये सब निशान देख रहे हैं? चुपचाप चलिए मेरे साथ, कोई मजाक मत कीजिए। उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी, लेकिन वेद ने उसकी बात सुनकर रुकने की जगह उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। वेद, आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मानवी घबरा गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी और आखिरकार वो दीवार से जा लगी। मानवी के मन में जो रात हुआ था उसी का विचार चल रहा था। मानवी को डर था कि कहीं वो उसके नज़दीक आए और रात की तरह वो खुद भी अपने आप से कंट्रोल ना खोल दे। जो भी उन दोनों के बीच हुआ था, मानवी को वेद के नज़दीकी बुरी नहीं लगी थी। सच कहो तो उसे अजीब सा एहसास था कि वेद पर उसका हक है। शायद अभी इस एहसास को समझने में थोड़ा टाइम था, मगर उन दोनों के बीच नज़दीकी की एक शुरुआत हो चुकी थी। वेद उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और मानवी को जैसे घेर लिया। उसकी खुशबू और उसकी धड़कनों की आवाज़ मानवी को साफ सुनाई दे रही थी। उसका गला सूखने लगा। उसे वेद के जिस्म से उठती हुई खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। वेद उसके कान के पास झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम अभी कितनी खूबसूरत लग रही हो? मैं तो सोच रहा हूँ जिसने कल हमें वो ड्रग दी थी, आज फिर उसे ढूंढ ले। क्या हसीन रात थी। उसकी आवाज़ धीमी और मदहोश कर देने वाली थी। ऐसी रातें मुझे रोज़ चाहिए मानवी, और तुम्हें? मानवी का चेहरा और लाल हो गया। उसने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर धक्का देने की कोशिश की। देखो वेद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। वो अपनी शर्म को अपने गुस्से से छुपा रही थी। वेद बस मुस्कुरा दिया। उसका गुस्सा भी उसे प्यारा लग रहा था। उसने मानवी को थोड़ा स्पेस देते हुए पीछे हटकर कहा, ठीक है ठीक है, चलो दोनों साथ में चलते हैं। वैसे भी आज सबको जलाना है। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सबकी नज़रें तुम पर ही टिक जाएंगी, कहते हुए वेद की नज़रों में प्यार था। मानवी ने उसे घूरा, वेद? वेद हंस पड़ा, क्या करूं, लग तो रही हो कि जैसे मेरी रात वाली मोहब्बत का असर है। मानवी ने आंखें नीचे कर ली। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वेद की बातों से एक अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी खुद को पूरी तरह गुस्से में नहीं दिखा पा रही थी। उसके मन में रात की सारी बातें घूम रही थीं। उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। वेद उसकी झिझक देखकर और भी खुश हो गया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो ऐसा प्यार हम रोज़ कर सकते हैं, फिर निशानों की आदत भी हो जाएगी। वो प्यार ही क्या जिसकी निशानी ना रहे। वो पूरी बेशर्मी पर उतरा हुआ था। बेशर्म तो वो शुरू से ही था। मानवी से थोड़ा ध्यान से बात कर रहा था। उसे लगता था कि वो मानवी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आया है, मगर रात की बेशर्मी ने उसकी झिझक उठा दी थी और मानवी को अब तैयार रहना होगा उसकी बेशर्मी सहने के लिए। मानवी का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने तुरंत मुंह फेर लिया और पल्लू को और कसकर गले के पास कर लिया। आपको बस मजाक सूझ रहा है, चलिए नीचे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वेद ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान बनी रही। ठीक है मैडम, चलो। वैसे आज देखना, सब तुम्हें देखकर बस यही सोचेंगे कि बड़ी बहू कितनी खूबसूरत लग रही है, और मैं अंदर ही अंदर सोचूंगा कि ये सिर्फ मेरी है। मानवी ने उसे गुस्से और शर्म के बीच की नज़र से देखा। वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी आंख मारी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मानवी ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उसके पीछे चल दी। बड़ा हॉल आज किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी थीं। छत से झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे टंगे हों। गोल्डन और ऑरेंज थीम की फ्लावर डेकोरेशन से पूरा हॉल महक रहा था। स्टेज के बीचों बीच एक बड़ी सी जालीदार स्विंग रखी गई थी जिसे फूलों से सजाया गया था। कोनों में पंजाबी ढोलकिए बैठे थे और बैकग्राउंड में तेज तेज पंजाबी सॉन्ग बज रहा था, जिससे माहौल और भी जोशीला लग रहा था। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वेद और मानवी साथ साथ हॉल में दाखिल हुए। वेद ने आज क्रीम कलर का पठानी सूट पहना था, जिसकी स्लीव्स हल्की फोल्ड थीं और कॉलर खुला हुआ था, जिससे उसका रॉयल और कैजुअल दोनों अंदाज नजर आ रहा था। उसके बगल में मानवी ऑरेंज गोल्डन लहंगे में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल हल्के कर्ल में खुले थे और दुपट्टा गले से पिनफिया हुआ था। दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जोड़ी इस संगीत की जान हो। हॉल में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखकर रुक गए। वेदिका और बलवंत मेहरा के चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमारे दोनों बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वेदिका ने धीमे से कहा। अयान, जोया और बाकी मेहरा खानदान के लोग भी उनकी तरफ देखकर खुश हुए। कुछ लोग तो फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि ये दोनों सच में परफेक्ट कपल हैं। लेकिन हर जगह सब खुश हों ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें हल्की सी जलन साफ झलक रही थी, खासकर वेदांत मेहरा और रमेश मेहरा, जो साइड में खड़े दोनों को देख रहे थे और अपने होंठ भींच रहा था। लेकिन माहौल इतना खूबसूरत था कि उसकी निगाहें भी ज्यादा देर उनकी खूबसूरती से नहीं हट पा रही थी। पंजाबी गानों की बीट्स के साथ मेहमान तालियां बजाने लगे। वेद ने एक नज़र मानवी की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही शरारत थी जो कमरे में थी। मानवी ने बस आंखें नीचे कर ली और हल्की मुस्कान दबा ली। हॉल का माहौल पहले ही रौनक से भर चुका था। तेज पंजाबी गानों की आवाज पूरे हॉल को जीवंत बना रही थी। हर तरफ गहनों की खनक, हंसी की आवाजें और रंग बिरंगे कपड़ों की चमक थी। जोया एक साइड पर खड़ी हुई थी। उसने ब्लू कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था, जिसका गला डीप नहीं बल्कि छोटा और क्लोज नेक था। उसके सूट की पूरी आस्तीनें थीं और उस पर महीन कढ़ाई का काम किया गया था, जो उसे बहुत एलिगेंट लुक दे रहा था। उसके बाल सॉफ्ट बन में बंधे थे। साइड में सोफे पर बैठा अयान अपने हाथ में गिलास पकड़े चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक हसरत थी, जैसे वो सोच रहा हो कि ये लड़की कब उसकी जिंदगी में आएगी। जोया बीच बीच में नजर घुमाकर उसे देख लेती। अयान के चेहरे पर एक छोटा सा शरारती स्माइल आ जाता। दोनों के बीच ये साइलेंट आई कॉन्टैक्ट किसी को भी नजर आ सकता था। जोया परेशान थी, वहीं पर अयान खुश था।
उधर सारा भी एक कोने में खड़ी हुई थी। उसने मरून कलर का खूबसूरत अनारकली पहना था, जो उसे बहुत ग्रेसफुल और रॉयल बना रहा था। लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इमरान बार बार उसे ही देख रहा है। इमरान की निगाहें कहीं और जाती ही नहीं थीं। सारा को गुस्सा आ रहा था, पर कहीं ना कहीं दिल की गहराई में वो इस ध्यान को नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रही थी। उसने दुपट्टा बार बार एडजस्ट किया ताकि उसकी बेचैनी छुप सके।